और वसत का तीसरा मानी अब वास्ता, वास्ते लिंक के मानों में। कैसे लिंक है हम? आप देखिए, आप नोट कीजिए कि एक पैगाम अल्लाह की तरफ से आता था ना, रसूले मलक जिब्राइल लेकर आते रसूले नबी के कल्बे अथर पे, समझ आ रहा है? अल्लाह से जिब्राइल, जिब्राइल से कल्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह के नबी की जुबान से वमा यंते को निल हवा इन हुआ इल्ला वही युहा, पूरी इंसानियत को पहुंचा। अब क्या हुआ? अल्लाह, जिब्राइल और कल्बे मोहम्मद, ये सिलसिला पहले था। नबी सल्लम के फौरन बाद वही का सिलसिला रुक गया। एक औरत रो रही थी आपकी वफात पे, तो लोगों ने सब्र दिया, कहा सब्र करो, अल्लाह के नबी बड़ी अच्छी जगह पे होंगे। कहने लगी, इस पे नहीं रो रही क्या आप? नहीं, अब इस पे रो रही हूं कि अब जिब्राइल नहीं आएंगे, अब वही का नया हुक्म नहीं आएगा। जो दीन आना था वो आ गया। इतनी बाशऊर थी अल्लाह के नबी के दौर की औरत। अब क्या होगा? आप देखिए, अल्लाह के नबी की जुबान से निकले हुए मोती जो इस कुरान और हदीस की सूरत में जमा हो गए, इसमें एक तीसरी कड़ी लग गई। अल्लाह, फरिश्ता, फिर रसूल, और रसूल के बाद उम्मत मुस्लिमा, यानी हम एक थर्ड लिंक लग गए उसके अंदर। अल्लाह ने हमें अंदर दी, गोल्डन चेन है। कभी आप और मैं महसूस करें ना, तो शुक्र से सर सजदे में जाए, हमारा नाम फरिश्ते और रसूल के बाद आ गया और हमने ये काम करना है। जैसे आप देखिए, जिस्म में खून होता है ना, खून क्या करता है? सारे जिस्म में फिरता है और दिल पंप करता है। हमारी हैसियत इस पूरी इंसानियत के अंदर खून की तरह। अगर आप दुनिया में किसी भी निज़ाम को अगर चेक करना चाहें, तो आप देखिए, हमारे जिस्म के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है ना। इम्यून समझते हैं? बीमारियों से बचाना। ये जो एड्स होती है ना, उसमें इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है। आपको नज़ला होगा ना, आप उस नज़ले से ही मरेंगे। अब अगर आपके सर में दर्द है, अब ये मौत तक चलती रहेगी। ये बीमारी होती है, यानी इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, कुव्वत मुदाफ़त खत्म हो जाती है बंदे की। अब जब इम्यूनिटी खत्म हो जाती है ना, तो हर बीमारी फैलती है। उम्मत मुस्लिमा का काम इस दुनिया में क्या है? बुराइयों को रोकना। अगर मुसलमान अपना ये काम करते रहें, बुराइयों के आगे दीवार बने, खराबियों को रोकें, टोकें, हराम को छोड़ें, दुनिया सही रहेगी। आज एड्स क्यों है दुनिया में? आज होमोसेक्सुअलिटी क्यों है दुनिया में? हमने ये काम छोड़ा हुआ है। देखिए, बड़े दर्द के साथ कह रही हूं ये बात। आज पूरी दुनिया की करप्शन और खराबी की वजह हम मुसलमान हैं, और हम कहते हैं अमेरिका है, हम कहते हैं यहूद है। वो दो खानदान है ना, वो लगे हुए कर दें। तुम तो सोए हुए हो, तुम तो जो दीन का काम थोड़ा करते हो, तुम्हें वो भी चुभता है, तो दूसरे तो करेंगे। किसी शहर की सफाई वाली कंपनी अगर काम करना छोड़ दे, हड़ताल कर दे ना, एक हफ्ते में सड़कों पे बदबू आने लग जाए, गटर उबलने लगे, ट्रैश कैन के पास से गुजरना मुहाल हो जाए, कितना ताफुन फैले उस शहर में। आज उम्मत मुस्लिमा का हाल भी यही है। हमने सफाई करनी छोड़ दी, गंदगी उठानी छोड़ दी। लोगों के जहन गंदे, लोगों की आंखें गंदी, लोगों के कान गंदे, लोगों के पेट में हराम के लुकमे। हम कहते हैं, चुप करो, बुरे नहीं बनो, रिश्तेदारी का मामला है, चुप, सबको बताए, सबके घरों में कुरान है। आज हम जिम्मेदार हैं इस दुनिया में एथीज्म के, आज हम जिम्मेदार हैं इस दुनिया में कुफर के। आप देखिए ना, किसी को पैगाम दे, मैं यहां बैठी हूं और मुझे कोई बात याद आ जाए अर्जेंट, फौरन एक घंटे के अंदर करना है, तो मैं किसी को यहां से आप में से मैसेज दे के कहूँ कि रिसेप्शन पे दे दें, उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगी वो काम हो गया। क्लास खत्म होगी, मैं जाके पूछूंगी, भाई किया आपने वो क्या काम? मुझे एकदम गुस्सा आ जाएगा कि इतना अहम काम था, इतना जल्दी करने वाला काम था, आपने क्यों नहीं किया? वो कहेगी, कौन सा काम, किधर? अब जो मुझे उन पर गुस्सा था एकदम, मैं आपको पैगाम नहीं पहुंचा, तो मैं इनको पूछूंगी, आपने उनको पैगाम दिया? इन्होंने नहीं दिया। वो सारा गुस्सा रिसेप्शन वाली सिस्टर का मेरा इन पे टूटेगा। बात समझे ना, कि आपने पैगाम क्यों नहीं दिया? अब आप इसको मिसाल लीजिए, दुनिया में कुफर, शिर्क, गंदगी, खराबी, अर्जेंट मेयर्स लेने की जरूरत है। हम मुसलमानों ने पैगाम ही नहीं आगे दिया। वो साफ कह देंगे क़यामत के दिन, हमारे पास तो कोई पैगाम नहीं आया। तो इस वक्त अल्लाह का गुस्सा उम्मत मुस्लिमा पे इसलिए टूट रहा है कि हमने अपना काम छोड़ा हुआ है, हम इम्बैलेंस्ड रह गए। आप देखिए, एक एम्बुलेंस होती है ना, जान बचाने के लिए भाग रही होती, पी पी करती, रस्ते छोड़ दो, पीछे हो जाओ। इस तरह मुसलमान को एम्बुलेंस बनना है, ईमान बचाने के लिए भागे। हमारा हाल यह है कि हमारी रसवाई दुनिया में जितनी बढ़ रही है, उतना हमारा किबर बढ़ रहा है, हमारा उतना तकबर बढ़ रहा है। फजीलत याद है, हम नबी की उम्मती, हम कह लीजिए कि क्या क्या अपने नाम के साथ फजीलतें लगाए फिरते हैं, हम सैयदों का खानदान, हम नबियों का खानदान है, लेकिन काम भुला हुआ है। इसलिए जरूरत है इस बात की फिक्र करें, वरना याद रखिए कल क़यामत के दिन नबी की शिकायत होगी। सूरह फुरकान में आप पढ़ेंगे 19वें पारे के पहले रुकू में, या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुराना महजूरा। क़यामत के दिन अल्लाह के नबी शिकायत लगाएंगे, अल्लाह ये है मेरी वो उम्मत जिसने इस कुरान को पकड़ के भी छोड़ा हुआ था, हमें उम्मीद थी सिफारिश की, वहां शिकायत लग गई है। तो आज आप और मैं अपने दामन में झांक के देखें हम कहाँ खड़े हैं। ला इला कहते तो हैं लेकिन उसको देखते नहीं है। इसीलिए अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं कि तुम्हें इसकी फिक्र करनी है। अल्लाह के नबी ने हज्जतुल विदा के मौके पे ये जिम्मेदारी दी थी, लोगों गवाह रहना मैंने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, फिर रोए, फिर अल्लाह को गवाह बनाया और फिर उम्मत से कहा कि तुम में से हर हाजिर गायब को पहुंचा दे। आज मेरे आपके कंधे पे ये जिम्मेदारी है, कल अल्लाह के नबी क़यामत के मैदान में पूछेंगे सुनाओ तुम्हारा क्या हाल था। रह गई बात ये जो भी किबले की चल रही थी और आगे फिर आने लगी है, वमा जलनल किबलत अल्लाती कुंता अलैहा इल्ला लिनअलम मैयत तबिउर रसूल। और ये किबले की तब्दीली जिस पे आप थे ये तो सिर्फ हमने इसलिए की ताकि हम देख लें कि कौन रसूल के कदमों पे चलता है, कौन इतना ओबीडियंट है कि रुकू की हालत में घूम जाता। आपको पता है नबी सल्लम जोहर की नमाज पढ़ा रहे थे, रुकू की हालत में थे किसी सहाबी के घर पे, और रुकू की हालत में हुक्म आया, कोई देख रहा होता उस वक्त? और अल्लाह के नबी ने बोल के हुक्म दिया? नहीं दिया। अल्लाह के नबी ने उनको फेस किया? नहीं। आप देखिए ना, इमाम आगे होता है पीछे ले चाहे भाग भी जाए नमाज छोड़ के, तो उसको तो नहीं पता, लेकिन अल्लाह के नबी के रुकू में जाते देख कर किबले को बदलता सब सहाबा ने अपने रुख बदल लिए। और कौन है जो के मैयत तबीउर रसूल मिम्मैन क़लिबु अला अक़िबैही, कौन है जो अपनी एड़ियों पे फिरता है? दोनों मानी है, देखने में लग रहा है कि अक़िबैही वो फिरना है, हालांकि पहली सूरत जो ना मैयत तबीउर रसूल उन सहाबा की तारीफ में है जो नमाज के दौरान ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घूम गए थे, और मिम्मैन क़लिबु अला अक़िबैही के ये असल में अक़िबैन था, दो एड़ियां, मुजाफ की वजह से हा साथ लग गई तो वो गिर गया। मतलब ये कि दीन से फिरना, बैकवर्ड होना। आप देखिए एड़ी पीछे होती है ना, यहां बैकवर्ड किसको कहा जा रहा है? जो रसूल की इत्तबा नहीं करता। इस्लाम बंदे को रोशन मिजाज बनाता है। बैकवर्ड है वो लोग जो नबी के तरीकों को छोड़ते हैं, और सहाबा में से कोई एक भी नहीं था। आप सोचे जरा, ये छोटी बात है, कोई बोले ना कहे ना, बल्कि ये इत्तबा की निशानी थी। एक होती है अतात, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। इतात क्या होती है? तौन से, तो कहते हैं खुशी को। अल्लाह के नबी सल्लम ने कुछ कहा बोल के और आप खुशी खुशी वो कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि मैंने नबी की इतात की। और ये सूरत निसा का टॉपिक है मेन, आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एक होते कहा कुछ नहीं, खुद किया, जैसे यहां किबले की तरफ से रुख चेंज किया, मुंह से नहीं बोला, तो सहाबा ने किसको कहते हैं इत्तबा। फर्क समझ आए? इतात में बोल के कहना पड़ता है, डू दिस डोंट डू दिस। आप अपने बच्चे को कहते हैं ये करो ये ना करो, बच्चा कर लेगा, आप कहेंगे उसने मेरी इतात की। एक ये कि जो आप कर रही हैं आपकी बच्ची आपको देख के खुद ही करने लग गई, ये इत्तबा होती है, और इत्तबा ज्यादा मुश्किल होती है, इसमें तो कहना भी नहीं पड़ता। और सहाबा इतनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के नबी से, जूता भी पहनते थे तो सोचते थे पहले आप कैसे पहनते थे। इब्ने उमर इसमें अपनी मिसाल आप थे, सफर के दौरान जहां जहां अल्लाह के नबी रुकते ऐसे ही कभी जरूरत के लिए उतरे ना, तो अब्दुल्ला बिन उमर अपनी सवारी से उतर जाते थे। भाई क्यों उतरे? वहां ऐसे बैठ गए जैसे कज़ाए हाजत के लिए बैठते हैं, उठ के आ गए। गुलाम ने कहा आपको जरूरत तो नहीं थी, आप क्यों उतरे? कहा इसलिए कि नबी के साथ एक दफा आया था इस जगह पे, आप अपनी हाजत से फारिग हुए थे, तो मैंने कहा मैं भी आपकी सुन्नत का मजा ले लूं। सहाबी को खरबूजा मिलता है, खा नहीं रहे, क्यों भाई? कहा याद नहीं आ रहा कि नबी ने कैसे खाया था, काटा था, फोड़ा था, तोड़ा था, तो याद आएगा तो फिर खाऊंगा। ये तो बहुत ही है, हमारे गले सूख जाते हैं सुन सुन के, बोल बोल के कान थक जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं फर्ज है, हराम है, मन है, कोई तो कहते ये वो तो वो। ये है असल में इत्तबा, ये है असल में दीन की रूह। उम्मत मुस्लिमा घूंगी बहरी बनकर काल अल्लाह व कालर रसूल पे चलने लग जाए, ना नफा सोचे ना नुकसान सोचे, मेरा फायदा होगा नहीं होगा, इस तरीके से एक बंदा चले तो फिर बात बनती है। अल्लाह ने एक ऐसी प्यारी उम्मत बनाई थी। पहले नबी या कौम ही कहते थे, इस नबी की उम्मत को या अय्युहन्नास का पैगाम देकर बता दिया कि तुम अपनी फिक्र कर लो। अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस, नो क्वेश्चन एट ऑल। अल्लाह ताला ने आपके मेरे लिए ये सारी बातें पेश करके हमें अपने हालात की आगही की फिक्र दी, और साथ ही कब इनका नतल कभी रतन है, ये बड़ी मुश्किल बात, इट्स वेरी हार्ड। क्या बला, क्या भारी है, बता सकते हैं आप में से कोई? इत्तबाए रसूल, चूं चरां किए बगैर इतनी बड़ी बात मानना। हाँ, मगर इल्ला लल्लज़ीन हद अल्लाह, उनके लिए बहुत आसान है जिनको अल्लाह ने रास्ता दिखा दिया। दुआ करें अल्लाह हमें रास्ते दिखा दे। वमा कान अल्लाह लियुदीया ईमानकुम, और अल्लाह तुम्हारे ईमान जाया तो नहीं करेगा। ये ईमान कौन सा आ गया, क्वेश्चन उठा। इतनी चहमगोइयां हुई उस वक्त के सवाल क्या उठा कि ये कैसे मुसलमान है। कभी कहते हैं इधर मुंह करके नमाज पढ़ो, चलो जी पढ़नी शुरू की। अब कहते हैं इधर मुंह कर लो, देखना कल ये इधर कराएंगे। जितने मुंह उतनी बातें। खैर, अब क्या हुआ, 16-17 महीने जो आपने बैतुल मकदस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा, तो उस दौरान कुछ सहाबा की वफात हो गई। तो जब किबले की तब्दीली का हुक्म आया, तो कुछ का क्वेश्चन ये था कि अब इस किबले की तरफ मुंह करने से पहले जो मर गए हैं, या वो नमाजें जो 16-17 महीने हमने बैतुल मकदस की तरफ मुंह करके पढ़ी, उनका क्या बना। उसका जवाब है, अल्लाह तुम्हारी नमाजें जाया नहीं करेगा। और नोट कीजिएगा, यहां नमाज की जगह लफ्ज क्या आया, ईमान। ये क्यों, नमाज ईमान? जी, ईमान है तो नमाज होगी, नमाज नहीं है तो ईमान कोई नहीं। कुफर और इस्लाम के बीच में फर्क करने वाली चीज नमाज। तो फिर वो मुसलमान कैसे है जो नमाज जुमे के जुमे पढ़ते हैं, और वो कौन है जो ईद की नमाज पढ़ते हैं सिर्फ। देखिए, ये इतना क्रिटिकल इशू है, इस पे कोई नहीं बोलता। जो सही मसले हैं उस पे कोई नहीं बोलता उम्मत में। हाथ बांधने पे बोलेंगे, रुकू करने पे बोलेंगे, फाते ऊंची करने पे बोलेंगे, औरत और मर्द की नमाज पे बोलेंगे, क्योंकि लड़ाने वाले इश्यूज हैं ना। इस पे क्यों नहीं कोई बोलते मौलवी साहब? पांच मस्जिदें अगर आपके शहर में है ना, पांचों मस्जिदें इस बात पे इत्तफाक कर ले, हमने अपने खुतबे जुमे के सिर्फ इस मौजू पे देने हैं कि जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता वो इस्लाम से निकल जाता है। एक बेनमाजी उस मस्जिद से निकलेगा, ये मौलवी से बड़ी सख्त बात करते हैं, अगले जुमे दूसरी मस्जिद में जाएगा, वहां भी मौलवी साहब यही मसला बयान करें। और इसमें कोई किसी इमाम का शक नहीं है। कोई भी स्कूल ऑफ थॉट हो, कोई मजहबी रहनुमा, इमाम या लीडर, ये नहीं आपको कह सकता कि मुसलमान होकर भी नमाज ना पढ़ो तो खैर है। सच है कि नहीं? ये तो बेसिक बातें हैं। सारे मस्जिदों की इमाम एका कर ले, हमने जब तक उम्मत पांच वक्त की नमाजी नहीं हो जाए, हमने सूद की बात नहीं करनी, हमने रोजे की बात नहीं करनी, पहले इनकी नमाजें ठीक करानी है। जब नमाज ठीक हो जाए फिर रोजे पे आए, फिर उसके बाद ज़कात पे आए। जब बेसिक पांच चीजें ठीक हो गई, बाकी काम तो यूं सीधे के सीधे होंगे। अलाइनमेंट ठीक करते हैं गाड़ी की, बाकी सब कुछ खुद ही ठीक हो जाता है। हमारी तबलीग टेढ़ी मेढ़ी है, नमाज कोई नहीं पढ़ता, और आके वो हमसे सवाल पूछता है पहले कि ये बताएं कि वो सिगरेट पीना चाहिए कि नहीं। अच्छा, सिगरेट पीने वाला सिगरेट हराम है कि हलाल है? एक बच्ची ने एक दफा मेरे से सवाल किया, कभी पता नहीं, पुरानी बात है, अबू बस सिगरेट पीते हैं तो हराम है कि हलाल है? मैं क्या कहूँ उनको, मैंने कहा ये बताओ कि अबू नमाज पढ़ते हैं? कहती नहीं पढ़ते। तो मैंने कहा भी चुप करके बैठो, पहले अब्बू को नमाजी बनाओ। अगर अब्बू नमाज नहीं पढ़ते और सिगरेट छोड़ भी देते हैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ जाना ज्यादा। ठीक है, एक बुराई दूसरी बुराई का रास्ता खोलती है, एक नेकी दूसरी नेकी को आसान करती है, बट पहली चीजें छोड़ के दूसरी करना ठीक नहीं। आप दूसरी मंजिल छोड़ के तीसरी पे फ्लांग सकते हैं। ये हमारी आज बेहंगम तबलीग है जिसने बहुत सारों को खुली छुट्टी दी भी, और ये लड़ाइयां झगड़े सारे मस्जिदों के हैं ही इस बात पे। अपनी मर्जी का हाई लाइट करते हैं हिस्सा बेसिक पे। अल्लाह नमाज को यहां ईमान कह रहे हैं, ये इससे बड़ी दलील पूरे कुरान में आपको कहीं नहीं मिलेगी कि नमाज ईमान है और ईमान नमाज है। इन अल्लाह बिन नासिल रऊफ रहीम, अल्लाह ताला लोगों के साथ बहुत मेहरबान है। आप देखें कि यहां फिर लफ्ज अल्लाह सुबहाना ताला की तरफ जो आ रहा है ना, लोगों के साथ बहुत रऊफ है। रऊफ का लफ्ज सुना आपने, राफतुन कहते हैं बाप की मोहब्बत को। रा हमजा फाइज का रूट है, राउफा या रूफा इसम सिफ्त है। तो रऊफ कौन होता है या राफत कहते हैं, किसी की तकलीफ दूर करने के लिए इस पर मेहरबानी करना। आम लफ्ज क्या अल्लाह ताला के लिए, आगे ही लाया हुआ इसके, रहीम। रहीमी की सिफत आम है, लेकिन रऊफ कब बनता है अल्लाह ताला? जब किसी की कोई खास तकलीफ दूर करनी होती है। तो यहां पता चला कि ये सारे अहकाम देकर अल्लाह ताला तुम पे सख्ती नहीं कर रहा, तुम पे नरमी कर रहा है। तुम्हें अल्लाह ताला खैर उम्मत बना रहा है, उसने उम्मत वसत बनाया, तुम्हें मॉडरेट नेशन बनाया, तुम्हें प्यारे नबी की उम्मत बनाया। अल्लाह ने तुम्हें अफरात और तफरीत से बचाया। इबादात के अतबार से देख लो तुम कितनी खूबसूरत कौम हो। हर वक्त नमाज ही नहीं है, हर वक्त रोज़े ही नहीं है। सारा पैसा ज़कात में तो नहीं देना, ना तो रहबानियत है कि सब छोड़ दो, और ना सिर्फ दुनिया को फन समझना। मुआशरत और तमद्दन देख लीजिए, माँ के हक हैं, बीवी के हक हैं, बेटी के हक हैं। कमाओ भी, बच्चों को भी दो, खुद भी खुश रहो। तुम्हारे जिस्म का तुम पे हक, तुम्हारे मेहमान का तुम पे हक है। कमाते हो उसमें से कुछ हिस्सा अल्लाह के रास्ते में दो, कुछ रिश्तेदारों को दो। ये सारे काम करते करते लेकिन फरीजा तुम पे शहादत हक का है। आज उम्मत कमाने में मसरूफ हो गई, मर्द कमाते हैं, औरतें गवाती हैं, खर्च करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। इस वक्त जो लॉस्ट हैबिट है ना उम्मत मुस्लिमा की, वो क्या, हक की गवाही खत्म हो गई। असल बात यही थी, यहीं से डोरियां टूटी हुई हैं। इसलिए अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, वमा जालनल क़िबलतल्लति कुन्ता अलैहा। अब देखिए कि नहीं हमने बनाया वो क़िबला जिस पे तू पहले से था, सिर्फ इसलिए कि लिनालमा मैयतब रसूल। ये तो एक सिर्फ छोटा सा टेस्ट था, असल बात तो देखना क्या था कि कौन बदलता है और कौन नहीं बदलता। और यहां से एक और बात पता चलती है कि इतात और इतबा उसी के लिए आसान होती है जिसके लिए अल्लाह आसान कर दे। सवाल करने वाले ज्यादा, क्वेश्चन उठाने वाले ज्यादा, जवाब मानने वाले थोड़े। सवाल जवाब पूछने वाले भी अब बाद में जाके अमल अपनी मर्जी ही की चीज़ों पे करते हैं। अब ये जो आयत आ रही है इसको हाईलाइट कीजिएगा, इसके अंदर हुक्म है अब किबले की तब्दीली का। पहले तो अभी हमें केयरफुल किया गया था ना, तब फरमाया कद नरा तकल्लुबा, कद तहकीक नरा हम देखते हैं। यहाँ देखिए कद का लफ्ज़ दोबारा आ गया, इन्ना कद ला लामे ताकीद बहुत दफ़ा आ रहा है इस सबक में, हम देखते हैं। इससे पहली बात तो पता चलती है कि अल्लाह ताला देखता है। क्या नाम है अल्लाह ताला का एक, अल बसीर। जी बिल्कुल, तो यहाँ से अल्लाह ताला की सिफत बसारत का पता चलता है। क्या देखते हैं, तकल्लुब वजही का, पलटना या फिरना आपके चेहरे का। तकल्लुब है कल्लब युकल्लिबु, इनकलाब बीसी से, ये जो लफ्ज़ कल्ब है ना ये बीसी से है, पलटना। यहाँ मुराद है आसमान की तरफ देखना, फिस समा आसमान में, फी से यहाँ क्या मुराद है कोई बताएगा? तो हम आसमान की तरफ देखते हैं ना, आसमान में तो नहीं देख रहे होते ना, तो फी से मुराद इला, हम आपका आसमान की तरफ देखना देखते हैं। इससे क्या पता चलता है कि हम आसमान की तरफ देख सकते हैं। क्यों? इबरत से, प्यार से, मोहब्बत से, अल्लाह के कुर्ब के लिए देख सकते हैं, लेकिन नमाज में नहीं देख सकते। हदीस में है कि जो नमाज में ऊपर देखे तो हो सकता है अल्लाह उसकी आंखें उचक लें, क्योंकि गुस्ताखी है ना, किसी के सामने बैठे हो ना और आंखें फाड़ फाड़ के आप टुकर टुकर देखे ना तो अच्छा नहीं लगता। आपका ही बच्चा आपको घूरना शुरू हो जाए तो आपको गुस्सा आएगा कि नजरें नीचे करो। तो नमाज में हुक्म नहीं, लेकिन वैसे आप और मैं आसमान को देख सकते हैं। और एक और इससे क्या पता चला कि अल्लाह ताला आसमान पे है। आपको तो इस्लाम का बुनियादी अकीदा है अल्लाह आसमान पे है। अच्छा फिर ये जो हम कहते हैं कि अल्लाह हर जगह है हाजिर नाजर, इसका क्या मतलब है? जी बताइए। शाबाश, देखिए इसको समझ लें, ये अकीदे की बात है। जैसे आपका मेरा इस वक्त एक वजूद है ना, अल्लाह ने हमें जैसा बनाया वैसे, इसी तरह अल्लाह का वजूद है। ये कहना ना कि अल्लाह एक सोच है, एक थिंकिंग है, ये गलत है। वजूद है किस चीज से? अल्लाह नूरुस्समावाती वल अर्द, वो नूर है। हजरत आयशा से किसी ने पूछा था कि क्या अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा, या आयशा ने अल्लाह के नबी से कभी पूछा? तो आपने फरमाया कि वो तो एक नूर है, उसको मैं कैसे देखूं, लेकिन है। ठीक, जैसे अभी ये बल्ब या लाइट टॉर्च चलती है ना, पहली बात है अल्लाह का वजूद है, दूसरी बात है वो किधर है। अपने वजूद के एतबार से, जैसे इस वक्त आप और मैं ओस्लो में बैठे हैं ना, नॉर्वे में। अब हम कराची में तो नहीं है इस वक्त ना, हम पाकिस्तान में नहीं है ना। हम यहाँ से छुट्टी लेकर पाकिस्तान चले जाते हैं तो फिर हम इधर तो नहीं होते उन दिनों। हमारे जो साथी आजकल नहीं है इधर, वो हमें कभी दिखे, क्योंकि वो उधर है। अल्लाह सुबहान तला अपने वजूद के साथ सातवें आसमान पे वहीं रहता है। हर रात आसमाने दुनिया पे नजूल फरमाता है, खास खास मौके पे अल्लाह तला नीचे आता है, अहादीस से मिलता है, बट उसका वजूद ऊपर है। लेकिन वहां रहकर भी देखता, सुनता और जानता। समी, बसीर और अलीम, ये तीन सिफात रट लें, वजूद उधर है। इसके बरक्स जो लोग कहते हैं अल्लाह हर जगह हाजिर नाजिर है, या तेरे अंदर अल्लाह अल्लाह खलूल करता है, जिन कवालियों में ऐसे बहुत जुमले होते हैं, अंदर तू बाहर तू अल्लाहू अल्लाहू, ये ठीक नहीं है। जब अंदर अल्लाह किसी के, तो बंदा बाथरूम में जाता है तो अल्लाह साथ है, जानी जिना करता है तो अंदर अल्लाह है तो किधर गया। ये बहुत बातिल अकीदा है, हमें इससे बारीकियां पता नहीं होती, इसलिए हम सोचते भी नहीं। लेकिन ये आयत बताती है कि फिस समा, अल्लाह आसमानों पे है। फलनुवल्लियन्नक क़िबलन तरदाहा, आप जरा नोट कीजिए, ताकीद दर ताकीद, इतनी ताकीद है जैसे आप अपने शोहर को चीज खरीदने के लिए बार बार कहती हैं, ले आइएगा, जरूर ले आइएगा, भूलिएगा नहीं, वक्त पे ले आइएगा। फा ला नू वली न का, इतनी ताकीद दें कि हम जरूर बदलेंगे आपके किबले का जो आप चाहते हैं। यहां से एक तो पता चलता है नबी सल्लम से मोहब्बत, द बेस्ट लव स्टोरी अल्लाह की अपने नबी से। आज बहुत सारे लोग नात पढ़ना चाहते हैं ना, बड़ी इज्जत की बात है बंदा नात पढ़े। अल्लाह ने कुरान में नबी सल्लम के लिए जो मोहब्बत भरे मोती बखेरे, ऐसा खूबसूरत लफ्ज कोई बोल ही नहीं पाया। ये मोहब्बत की बात है, ऐ मेरे नबी मैं जरूर तुझे इस किबले की तरफ बदलूंगा जो तू चाहता है, तो कर क्या, फवल्ली वजह का, इसको हाईलाइट करें। ये है हुक्म के लफ्ज। आपसे पूछा जा सकता है असाइनमेंट में सवाल कि तब्दीलिए किबला के हुक्म के लफ्ज ढूंढ के लिखिए, तो ये दो लफ्ज है, फवल्ली वाहिद है देखिएगा, क्योंकि सिर्फ पहला हुक्म नबी सल्लम को था, फवल्ली वजह का, बस फेर लीजिए अपने चेहरे को शत्रल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ। यहां से शत्र आपको फिर पता चल गया, सेमी हाफ को कहते हैं, आधा हिस्सा। ये इस गोल दायरे को देखिए, ये पूरा शत्र है कि आप खाना काबा की तरफ घूम जाइए, ठीक है, जिधर भी मुड़ना चाहे। वह हैसु मा कुंतुम, और जहां भी तुम हो, देखिएगा पहला फवल्ली क्या था, वाहिद, सिर्फ नबी सल्लम को हुक्म आया। वह हैसु मा कुंतुम, और जहां तुम सारे हो, ये कौन है, सहाबे कराम, लिखें फिर ही पता चलेगा क्योंकि आगे इसकी तकरार है। तुम सारे हो कहां, बैतुल्ला के इर्द गिर्द हो, भी हरम में मौजूद हो, किधर, वजूह हकुम शत्रहु, अपने चेहरों को उसकी तरफ। वह इन अल्लज़ीना ऊतुल किताब, और बेशक वो लोग जो दिए गए किताब, लयालमूना, अलबत्ता वो खूब जानते हैं, क्या, अन्नहुल हक मे रब्बी हैं, ये कि ये हक है उनके रब की तरफ से। क्या हु से क्या मुराद है इधर, किबले की तब्दीली का हुक्म एक बात, और दूसरी बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी होना, हक है मेरे रब्बी हैं उनके रब की तरफ से। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, और नहीं है अल्लाह गाफिल, ये जो बा है ना जायद होती है तकरार के लिए, ये भी जोर देने के लिए होती है, वजन भी पूरा किया जाता है जुमले का। ये भी कहा जा सकता था कि अल्लाह गाफिल नहीं है, लेकिन बी गाफिल कहकर जुमले को खूबसूरत कर दिया गया, किस से, अम्मा यामलून वो करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किबले की तब्दीली का हुक्म देकर बता दिया कि अब आप अल्लाह के हुक्म से किबले का रुख चेंज कर लें, और आपको देखते हुए आपके सहाबा भी अपना मुंह बदल लेंगे। लेकिन आप ये उम्मीद ना रखें कि इसको ऊतुल किताब भी मान लेंगे, तसल्ली दे दी कि ये मदीना के यहूद नहीं मानेंगे। ये बात क्यों हुई, इसलिए कि तौरात में, बल्कि इनकी किताब तालमूद जो है, जो उसकी शरह, उसमें आज भी ये बात लिखी है कि आखिरी नबी का किबला बैतुल्ला होगा। अब जब बैतुल मकदस से बैतुल्ला की तरफ किबला बना ना, तो एक और निशानी पूरी हो गई कि यही नबी सच्चा, लेकिन फिर भी नहीं माने। और ये जो बात है ना कि अल्लाह के नबी की ख्वाहिश पे किबला बदला, ये बहुत बड़ा हुनर है। अलामा इकबाल ने इसी को कहा ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। नबी की पसंद का किबला अल्लाह ले रहा है, इससे बड़ी ऑनर और क्या होगी कि अल्लाह हमारी भी पसंद ना पसंद का ख्याल रखता है। बिल्कुल रखता है। पहले आप अल्लाह की माने फिर अल्लाह आपकी मानता है, हालांकि वो मजबूर नहीं है आपकी मेरी मानने पे। और ये भी पता चलता है कि जब अल्लाह से कुछ चाहिए हो ना तो अल्लाह ही से मांगना चाहिए। आसमान की तरफ देखें, आहोजारी के साथ करें, तड़पें, देखें, परेशान हो, कुछ भी करें। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से 1000 साल बाद हजरत सुलेमान ने बैतुल मुकद्दस को तामीर किया था, उसको हैकले सुलेमानी कहते हैं ये लोग। अन्नहू से मुराद बैतुल्ला का इस उम्मत के लिए किबला होना भी है कि बैतुल्ला ही असल में किबला है। और अहले किताब को बड़ी अच्छी तरह बात पता है, फिर माने क्यों नहीं? वही दो जवाब हैं, हसद और इनाद, तासुब, जानते बूझते नहीं मानना चाहते। कोई बात नहीं, नहीं मानते तो ना माने, उनका नसीब है। अल्लाह अपने नबी को तसल्ली देते हैं, वला इन, और अलबत्ता अगर, वला इन। देखिए यहां फिर लाम की ही तकरार है। कभी दिल चाहता है कि बैठ के सिर्फ आपको ये छोटी छोटी जमीरें लिखाऊं, अगर आप पे बोझल ना हो तो। कुरान का ला भी एक है तो ली भी एक है, तो हर लफ्ज के अंदर खूबसूरतियों की बहुत सारी बातें हैं। यहां क्या का, वला इन और अलबत्ता अगर, अगर आप इसको अलग लिखें तो ये क्या है भला, कोई आप में से मेरी मदद करेगा? वा ला प्लस इन, इन अगर, ला अलबत्ता, वा और, यही तीन लफ्ज हैं, वला इन और अलबत्ता अगर। लिखने का अंदाज फर्क है, अगर आप खोलेंगे तो वही तीन है। आपको आते हैं ये तीनों के मानी? वा का क्या मानी है, लाम का, इन, तो वही मानी आगे, वाला इन और अलबत्ता अगर। इसको कहले इख्तसार है, जमा किया हुआ लफ्जों को। अतैत अल्लज़ीना उतुल किताब, दे दे। अतैता का मानी होता है आना, लाना, आना। बट आगे क्या रहा है, बी कुल्ली, बा जो लग रही है ना कुल के साथ, वो इधर आके लाना हो गया। वाला इन अतैत अल्लज़ीना उतुल किताब, अगर लाए तो अहले किताब के पास, बी कुल्ली आयतिन, हर निशानी। आयत कौन सी होती है, निशानी, कौनी और शरई, कायनात से कोई निशानी आ जाए, या कुरान की आयतें जो आ रही थी। मा तभी वो किबलता का, फिर भी नहीं मानेंगे ये तेरे किबले को। बात समझिए, आप उम्मीद ना रखें। बस दफा इंसान को उम्मीद लग जाती है अपने ही जैसे दीनदार लोगों से कि अब तो ये जरूर हमें कंसिडर करेंगे, अब तो ये जरूर खुशी से हाथ आगे बढ़ाएंगे कि आप, हम एक ही काम कर रहे हैं, आओ मिलके काम करें। अल्लाह कहते हैं देखो किबले की तब्दीली को पहचान भी गए हैं, फिर भी ये आपके किबले को नहीं मानेंगे। लिहाजा ममान तबिता बिन किबला तम, अब आप इनके किबले को फिर ना माने। जब आपकी ये नहीं मान रहे सच बात होने के बावजूद, तो आप इनकी गलत चीज पे कॉम्प्रोमाइज क्यों करें? वही बात होगी ना, लकुम दीन हुकुम वलियत दीन। और वमा बादुहुम बिताबिन किबला तबाद, और इनमें से भी बास बास के किबले को कोई नहीं मानता। आप बता सकते हैं यहां बास से बास कौन मुराद है? यहूद और नसारा, दोनों बैतुल मकदस की तरफ मुँह करते हैं ना, बाहर देखने में ऐसे ही लगता है। लेकिन आपको पता है यहूद हैकले सुलेमानी का मगरबी वेस्टर्न साइड है, उधर मुँह करते हैं, जबकि नसारा मशरक की तरफ, क्योंकि हजरत मरियम वहां बैठी थी। मकान अनशरकी या कलफ्ज हम पढ़ेंगे सूरत मरियम में, एक ही किबला। अब देखिए ना, हम खाना काबा के चारों तरफ मुँह करते हैं ना, जिधर मर्जी पढ़ लें, काबा में बैठे हुए, इधर करें, इधर करें, इधर करें, तवाफ तो चारों तरफ ही हो रहा होता है। तवाफ के बाद सफ़े बनती हैं, तो कोई ऐसी तो नहीं बनती कि सारी सीधी हैं चारों तरफ। जबकि ये यहूद अगर इधर के हिस्से को यूज करते हैं ना काबा के, तो नसारा सिर्फ इधर को करते हैं बैतुल मक़दस के। आपस में भी एक नहीं है। अल्लाह अकबर, वाले इन इत्तबा अहवाहुम, और अगर आपने पैरवी की इनकी ख्वाहिशों की, इत्तबा ख्वाहिशों के, हवा, हवा से उड़ती भी ख्वाहिशें, मिन बादि मा जाका मिनल इल्मी, इसके बाद क्या आ गया आपके पास इल्म, इन्नका इज़ल लमिनज़्ज़ालिमीन, तो आप अलबत्ता जालिमों में हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ऐसा करने वाले थे? हरगिज़ नहीं। उम्मत को बता दिया, और बल्कि आपको मुझे बता दिया कि अगर आपने अब इनके किबले, अब यहां इनके किबले से मुराद क्या सिर्फ बैतुल मकदस है? नहीं, इनके रिचुअल्स क्रिसमस के हैं। क्रिश्चियंस का मजहबी त्यौहार है कि दूसरा मजहबी है ना। तो क्या आप और मैं इस आयत को अपने ऊपर लेके सोचें, वलैनित तबा तहवाह मिन बादी मा जाका मिन अल इल्मी, क्या हम क्रिसमस मना सकते हैं, ईस्टर मना सकते हैं? हम इनके तरीकों से दीन, चाहे वो दुनिया बन चुकी आज उनकी, क्या ये काम हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर किया तो फिर शामत आ जाएगी, फिर आप जालिम हैं, आपको इस काम के करने की इजाजत नहीं। आयत 146, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो लोग जिनको दी है हमने किताब, मुराद बनी इसराइल मदीना के, यारिफूनहू वो पहचानते हैं इसको। यहाँ फिर रुकिएगा, पीछे लफ्ज क्या था, इल्म, यहाँ क्या है यारिफून, मार्फत का लफ्ज सुना, वही लफ्ज है ये भी। इल्म है आम, मतलब माँ बच्चे को बताती है अल्लाह एक है, अल्लाह आसमान पे है, बच्चा मान लेता है। इल्म है मार्फत, इरफान, मारूफ, ये क्या था, किसी चीज को उसके आसार और अलामात से पहचानना, यानी अल्लाह की पहचान और मार्फत कब होती है, जब बंदा गौर व फिक्र करता है। ये लोग कौन, अहले किताब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, पहला हुक्म यारिफूनहू से मुराद नबी सल्लम, दूसरा हु से मुराद कुरान, और तीसरा इधर टेक्स्ट से मुराद किबले की तब्दीली को पहचानते हैं, कमा यारिफून अबनाहुम, जैसे ये अपने बेटों को पहचानते हैं। इनको ये हुक्म इतना क्लियर कट पता है कि ये बात होनी आखिरी नबी के साथ है, यानी ये नबी सल्लम की सच्चाई की दलील थी, लेकिन इसके बावजूद भी وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, अलबत्ता इनमें से एक गिरोह फिर भी हक को छुपाता है और वो जानते हैं। क्यों छुपाते थे? देखिए, हसद का अल्लाह बुरा करे, पूरी कौम को दीन से दूर कर दिया, तो इनको भी बता दो कि अल्हक्कु मिन रब्बिका, ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से। वला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, शक करने वालों में से ना होना। शक के लिए आपको लफ्ज लिखाए थे ना, रैब भी लफ्ज था, ये जो मुमतरीन है ये मिरिया, मिरिया वो शक होता है जिसमें झगड़ा डाला जाए, बाद लोग शक डाल के ना फिर झगड़े डलवाते हैं, मेरी बहू मुझ पे तावीज करती है, शक डाल दिया किसी ने, अब इसके बाद झगड़ा होगा। फिर कुलक, मुमतरीन मुमतर की जमा, दिल में कुलक शक डालना, जाहिर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि अब आप ऐसा ना करें, लेकिन असल में आपके जरिए से हर मुसलमान को यही कहा जा रहा है कि तुम शक को अपने पास ना आने दो, ये दीन सच्चा है, अल्लाह ने तुम्हें इस दीन पे पैदा किया है। सारी बात जो हमने पढ़ी, अगर इसमें से ओवरऑल चंद नुक्ते ले लें तो बात का खुलासा क्या है कि जब भी कोई तब्दीली आएगी शोर उठेगा। उम्मत मुस्लिमा को रिएक्शन से नहीं डरना चाहिए। आज के धर्म में रिएक्शन को कहते हैं पीयर प्रेशर, सोसाइटी क्या कहेगी, मैं ये कपड़े पहन के बाहर चली गई तो लोग क्या कहेंगे, मैंने ये रंग ढंग तैयार किया तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए इससे अपने आप को अलग कर दीजिए। फिर दूसरी बात, इससे क्या पता चलती है कि बंदे मोमिन का दिल कंपस की तरह होता है, पुरकार, जितने मर्जी दायरे खींच लें उसकी जिंदगी के इर्द गिर्द, सबका बुनियादी नुक्ता अल्लाह होता है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरा उठना बैठना, खाना पीना, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। यही इस्लाम है। नमाजें पढ़नी मुश्किल नहीं है, अल्लाह के लिए पढ़नी मुश्किल है। आप देखिए, खड़े हैं, रुकू में हैं, सजदे में हैं, फिर नीचे जमीन पे बैठ जाते हैं, लेकिन उसी रब का हुक्म नहीं मानते। कोई नमाज में लेटता नहीं है, कोई नमाज में टांग पर टांग चढ़ा के बैठने का सोचता भी नहीं है। तो जिस रब ने नमाज दी उसके बारे में हम इतने केयरफुल, लेकिन उसका दूसरी तरफ अमली हुक्म आता है तो हम कहते हैं कोई नहीं जी, मैं नहीं माफ कर सकती, मेरे दिल पे छुरियां चल रही हैं। अब सोचने की बात है ना, हम अपने ऊपर लेकर सोचें किस तरीके से हम अल्लाह की बात मानते हैं, और अपने आप से आप भी पूछें, मैं भी पूछती हूँ, अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहे होते और किबला बदल जाता, हमको बल्कि आज का मुसलमान कह दें, अगर हमारे सामने ये हुक्म आता आज के मुसलमान नमाज पढ़ते और इमाम साहब घूम जाते, क्या हाल होता उस वक्त मस्जिद में? हटो बचाओ और नमाज में ही लड़ाइयां शुरू हो जानी थी। ये थी सहाबा की तारीफ। सोचते ही कोई नहीं थे, पहाड़ों की तरह मुस्लिम इधर मुंह किया खड़े हो गए उधर मुंह। ऐसा लगता ना उनकी कोई मर्जी थी ना उनकी राय थी, क्योंकि देखे ना आकिबई का लफ्ज आया, आकबा याकिबु एड़ी मारने को कहते हैं, आकिबु वल आकब कहते हैं पाओं का पिछला हिस्सा, एड़ियां हील्स नहीं कहते जिसका आप वही है, आकबा हो कहते हैं किसी को पीछे कर देना। अच्छा उर्दू का एक लफ्ज आपने सुना है कभी, ताकुब करना, वो भी इसी से ही होता है, एक दूसरे का पीछा करना। और उकुब कहते हैं इंजाम को, नतीजा, वो भी पीछे ही आता है ना, एकाब उसी की जमा है, कुरान में कई दफा आता है इन्नल्लाह शदीदुल एकाब। और ये जो लफ्ज है ना युदी, जाया करने का लफ्ज उर्दू में आप बोलते हैं, वही लफ्ज है, जा युदी जाया करने को कहते हैं, हलाक करना तलफ करना, अल्लाह तुम्हारे ईमान को जाया नहीं करेगा। और ये कितनी खूबसूरत बात हमने पढ़ी है ना कि ईमान जाया नहीं करेगा, ईमान के अमन से, और अमन कहते हैं इत्मीनान को। नमाज को छोड़कर अमन मिल ही नहीं सकता। अमन को आज के दौर में लोग क्या कहते हैं, पीस। पीस क्या है? दिल का सुकून। जो बेसुकून है उसको नमाज पढ़नी पड़ेगी, कॉल नियत अमल ये सब कुछ जमा होता है फिर नमाज होती है। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें ऐसा मुसलमान बना दे कि जिसमें हम वाकई अल्लाह के आगे झुक जाएं। आप कोई सवाल कोई बात पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं इस बारे में। जी आप
ये लिख रही थी ना कि हजरत इब्राहिम के 1000 साल बाद हजरत सुलेमान ने बैतुल्लाह में तो आंसू नहीं बहाए, क्या किया था?
बैतुल मकदस को बनाया था जिसको ये करते हैं ना, हमारे भी जहनों में नहीं क्लियर होता ना कि बैतुल्ला पहले बना था या बैतुल मकदस। तो बैतुल्ला सबसे पहले बना था, फरिश्तों से बनवाया था अल्लाह ने, फिर आदम से बनवाया, फिर हजरत शीस से बना, फिर हजरत इदरीस ने बनाया, फिर तूफान नूह में इसकी जब बुनियादें रह गई और दीवारें टूट गई तो फिर सबसे पहले हजरत इब्राहिम ने बनाया। अभी तक 10 दफा बन चुका है, और अभी सऊदी हुकूमत आपको पता है कि उसकी एक्सटेंशन फिर भी करती रहती है। अभी रिसेंटली मेरा ले 2-3 साल पहले इसकी दीवारें ऊंची की गई, पहले ये नीचे होता था, अब जब ऊपर के फ्लोर बनाए गए तो फिर उन्होंने उसको ऊंचा किया गया, लेकिन बुनियादें नहीं छेड़ी किसी ने अभी तक, और वो नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।